जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यमुना जमुना तीरावन राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना जमुन तीरावन चारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
ISKCON BVD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahans Paribraj Kacharya Stotar Shad Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भागवत सार की श्रृंखला में छठे स्कंद पर चर्चा चल रही है आज इसके छठे और सातवें अध्याय पर चर्चा करेंगे सातवें अध्याय का एक श्लोक है इसको पढ़ेंगे और फिर चर्चा जारी रखेंगे कृपया दोहराइए को गृध्य पंडितो लक्ष्मीं त्रिपिष्ट पतिरे पतिरपि ययाहमासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वरः को गृधे पंडितो लक्ष्मीं त्रिपिष्ट पतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वरः को गृधे पंडितो लक्ष्मीं त्रिपिष्ट पतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वरः माताजी स्वीकार करेगा पंडितः विद्वान मनुष्य लक्ष्मीं ऐश्वर्य त्रिपिष्टः पतेः अपि यद्यपि मैं देवताओं का स्वामी हूँ यया जिसमें अहम मैं आसुरं आसुरी भावं विचार नीतः लाकर अद्यः अब विबुध देवताओं के जो सतो गुण से युक्त हैं ईश्वरः राजा। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना की थी, न धनम न जनम न सुंदरिन कविताम व जगदीश कामये। हे ईश्वर मुझे न तो धन या भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हों जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूँ। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यष्टि तथा समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल ये हुआ कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका में इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु। जो प्रबुद्ध नहीं हैं उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित हैं और वर्ण संकर कहलाते हैं और जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमरीकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं, किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मद्यपान तथा द्युत क्रीड़ा से अपने को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमरीकी लोग अपने राष्ट्र के अवनत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए उत्सुक हैं तो उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो भगवद गीता में उल्लिखित है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित कर लें। चूँकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है। बहुत काल बीता, श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार यह सलाह दी जाती है कि अमरीकी लोग अपनी भ्रमपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा, जो सारे विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में नारद मुनि को श्राप मिला, एक जगह नहीं रह पाएंगे, ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे। और दक्ष ने जब ये कर दिया तो फिर थोड़ा सा दुखी हो गए कि मुझे नारद मुनि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, जो हो गया हो गया, अब और संतानों की उत्पत्ति करो। तो इस बार दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष बहुत सावधान था इस बार कि पुत्रों को जन्म नहीं दूंगा। दो बार दिया और नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया। तो इस बार पुत्रियों को दूंगा ताकि नारद मुनि कुछ कर नहीं पाए। क्या करेंगे पुत्रियों को, तो थोड़ी वो सन्यासी नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभुपद कहते हैं वैदिक सभ्यता है जहाँ स्त्रियाँ सन्यास या वैराग्य नहीं लेती हैं। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों के लिए सन्यास का प्रावधान नहीं है। ये कोई पक्षपात नहीं है। आजकल की आधुनिक स्त्रियां ये सोचती हैं कि शास्त्रों में पक्षपात किया गया है, पुरुषों को ब्रह्मचारी सन्यासी बनने दिया जाता है और हम लोगों को नहीं बनने दिया जाता। कितनी गलत बात है, हमें भी सन्यासी बनना है, हमें भी वैराग्य लेना है। पहली बात ये जाननी चाहिए कि वैराग्य एक बाहरी दिखावा नहीं है। अगर किसी को वैरागी बनना है तो हृदय से वैरागी बनना चाहिए। और ये जो व्यवस्था की गई है वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में, ये हरेक के शरीर के अनुसार जो उसने स्वभाव अर्जित किया है, जो भी वो 84 लाख योनियों में जो जो शरीर प्राप्त होता है उसके अनुसार जो स्वभाव प्राप्त होता है उनके अनुसार कार्य दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए संतान उत्पत्ति करना या संतान को जन्म देना ये स्त्री का कार्य, पुरुष नहीं कर सकते। अब पुरुष कहने लगे कितना भगवान ने हमारे साथ पक्षपात किया, स्त्रियों को तो ये दिया हमें नहीं दिया, अच्छा हुआ नहीं दिया, हम संभाल नहीं पाते। पुरुषों का स्वभाव नहीं है ये, जो पीड़ा होती है या जो माँ को, माँ का कोमल हृदय जो बच्चे के लिए आवश्यक है वो पुरुषों के पास है ही नहीं, तो वो कैसे जन्म देंगे। तो इसीलिए जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार शास्त्रों में उसको कार्य दिए गए हैं, तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। जैसे मंदिर चलता है, मंदिर में अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं, ये मंदिर के व्यवस्थापन को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसा जिसका स्वभाव होता है उसके अनुसार उसको सेवा दे दी जाती है ताकि वो अपनी सेवा करके भगवान की भक्ति कर सके। इसी तरह वेदों में ये जो विभाजन किए गए हैं ये केवल इसलिए हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण के अनुसार व्यक्ति अपनी अपनी सेवा करके भगवान को प्राप्त कर ले। तो स्त्रियां पति की सेवा करके, संतान उत्पन्न करके, घर में जो सेवाएं होती हैं या पति की भक्ति में मदद करके वो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकती हैं, ये उनके लिए विधान है, उनको आवश्यक नहीं है। दरअसल जब पक्षपात का आरोप लगता है तो पक्षपात का आरोप तो पुरुषों को लगाना चाहिए कि वेदों में पुरुषों के प्रति पक्षपात है कि उनको तो जाकर तपस्या करनी है, उनको जाकर सारी भक्ति करनी है और स्त्रियों को लाभ मिल जाता है केवल मदद करने से। तो पक्षपात का आरोप तो पुरुषों को लगाना चाहिए लेकिन स्त्रियां लगाती हैं पक्षपात का आरोप। स्त्रियों के लिए तो कितनी सुविधा है, पत्नी अपने पति को मदद करे भक्ति में, अगर पति मुक्त हो गया तो पत्नी की मुक्ति तो निश्चित है, उसको सोचना भी नहीं है कि मेरा क्या होगा, तो केवल मदद करने से मिले, उसको भक्ति करने की जरूरत अर्थात उसको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, भक्ति तो करनी है, भगवान के जो भक्त हैं उनको अगर वो मदद कर रही हैं वही भक्ति है। तो इसलिए केवल पति को मदद करके वो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकती हैं। पति बेचारा तपस्या करे, सारे कष्ट वो सहे। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था की गई है ये शरीर की रचना, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के गुण के अनुसार सारी रचना। जैसे शेर है, उसके लिए घास खाने की व्यवस्था नहीं की गई है, खा ही नहीं सकता वो, शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, ये उसका स्वभाव है, उसकी व्यवस्था वैसी है। तो इसीलिए जिनके लिए जो व्यवस्था की गई है उसको वेदों में अगर हम स्वीकारें तो समाज सुचारू रूप से चल सकता है और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर भक्ति में प्रगति करके कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो दक्ष ने 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया, अलग अलग प्रजापतियों को उन्होंने अपनी पुत्रियां दे दी, किसी को 10 से विवाह किया, किसी से 13 पुत्रियां विवाह की, किसी से 4 पुत्रियां, ऐसे करते करते सारी 60 पुत्रियों का विवाह कर दिया। और छठे पूरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी केवल किस पुत्री का किससे विवाह हुआ और फिर उनसे कौन सी संतान उत्पन्न हुई, फिर उस पुत्री का किससे विवाह हुआ, फिर उससे कौन सी संतान हुई, ये वर्णन देते हैं। और वो परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये सुनना शुभ है क्योंकि ये सब भगवान से संबंधित हैं। तो ऐसे कहते कहते अध्याय के अंत में वो विश्व रूप का वर्णन करते हैं, जो दक्ष की एक पुत्री के पुत्री से ही उत्पन्न हुए। दक्ष की एक पुत्री से तो नहीं उत्पन्न हुए लेकिन उनके आगे चलकर जो उनसे संतानें आई उनसे उत्पन्न हुए। वैसे दक्ष की पुत्रियों ने केवल भक्त उत्पन्न किए ऐसा नहीं है, प्रभुपाद लिखते हैं कि इन दक्ष की पुत्रियों से विशेष करके जो कश्यप मुनि को 13 पुत्रियां ब्याही गई थीं उनसे सारे मनुष्य और अन्य योनियां प्रकट हुई हैं। तो जितने भी हम लोग देखते हैं ये डार्विन का जो सिद्धांत है कि पशु से मनुष्य बना है, शास्त्रों में इसको कुछ स्वीकारा नहीं जाता। तो दक्ष की पुत्रियों ने अलग अलग प्राणियों को जन्म दिया था, तो उसमें विश्वरूप भी प्रकट हुए। विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे, और तो त्वष्टा के पुत्र होने से ब्राह्मण भी थे लेकिन उनकी जो माता थी वो असुर कुल से थी, तो थोड़ा बहुत उनकी आसक्ति उस तरफ भी थी। तो ये कहते कहते अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हालांकि विश्वरूप वो देवताओं में नहीं आते क्योंकि देवताओं की श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी जब देवताओं ने बृहस्पति का अपमान कर दिया और बृहस्पति छोड़कर चले गए उन्हें, उस समय उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। तो जब ये सुना परीक्षित महाराज ने, तब उन्होंने सातवें अध्याय के पहले श्लोक में वो प्रश्न करते हैं, क्योंकि आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसा क्या हो गया कि गुरु छोड़कर चले गए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि गुरु का तो कार्य है शिष्य को संभालना, शिष्य को ज्ञान देना और शिष्य को ये देखना कि उसकी प्रगति हो, और वो भी देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो तुरंत उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या अपराध कर दिया था देवताओं ने कि गुरु जो थे उनके बृहस्पति वो छोड़कर चले गए उन्हें, और इन्हें फिर दूसरा गुरु लेना पड़ा। तो कृपया बताइए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी फिर ये कथा कहने लगते हैं। तो पहले 10 श्लोकों में इस अध्याय के ये वर्णन है कि कैसे इंद्र ने अनादर किया, और 11वें श्लोक से आगे, जैसे हम इस श्लोक में भी पढ़ रहे हैं 12वें में, इंद्र शोक प्रकट कर रहे हैं कि हाय कैसे मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तो ये 17वें श्लोक तक चलता है, और फिर उसके आगे ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी कुछ उपाय बताएंगे, फिर वे लोग विश्वरूप के पास जाते हैं। तो ऐसे पूरा अध्याय 7वां है, बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय और ये लीला है। अब जो अध्याय 7वें अध्याय से लीला प्रारंभ हो रही है, आगे चलकर वृत्रासुर और उसके आगे फिर राजा चित्रकेतु की कथा सब आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशों को देती है भक्ति के, व्यवहारिक चीजों को, सैद्धांतिक चीजों को। इसीलिए इन अध्यायों से अब आगे आप सबसे विनती, बड़े ध्यान से इन चीजों को हम ग्रहण करें। वैसे तो पूरी भागवत को बड़े ध्यान से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो सिद्धांत, जो उपदेश हमें मिल रहे हैं, जो निर्देश हमें मिल रहे हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहला निर्देश अब सुखदेव गोस्वामी देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या हुआ था। उन्होंने कहा एक समय इंद्र अपनी राज्यसभा में बैठा था और गंधर्व इत्यादि गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उनको चामर की सेवा की जा रही थी, और बाकी सारे दास दासियां खड़े थे। इंद्र अपनी पत्नी के साथ, शची देवी के साथ सिंहासन पर बैठे थे, और बहुत बाकी सारे लोग वहां पर, और बड़ा वर्णन है कि क्या इंद्र ने पहना था, कैसा उसका ऐश्वर्य था इत्यादि। और ऐसे समय में उनके गुरु बृहस्पति सभा में आए, और क्योंकि उस समय नृत्य चल रहा था, इंद्र व्यस्त थे, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया, देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, गुरु आए हैं। तो वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, ना तो वो उठकर खड़े हुए और ना ही उन्होंने उनको आदर सम्मान के साथ आसन दिया। जब गुरु आए अंदर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बृहस्पति आए, उन्होंने देखा कि इंद्र ना तो उठकर खड़े हुए और ना ही उन्होंने आसन दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंद्र ने सोचे तो रोज आते हैं, बृहस्पति रोज आया करते थे सभा में, तो इंद्र ने सोचा रोज आते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, इंग्लिश में एक कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। जब हम लोग बहुत किसी के निकट हो जाते हैं, फेमिलियरिटी, तो हम अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है ठीक है, कौन सी बड़ी चीज है, गुरु ही तो हैं, बृहस्पति हैं, क्या है ऐसे उसमें, है तो मैं फिर भी राजा हूं। तो ऐश्वर्य के मद में, धन के, ऐश्वर्य के, सत्ता के मद में उसने अपने गुरु का अपमान कर दिया, अहंकार, और ये अहंकार उसके पतन का कारण बना। तो इसीलिए जान लीजिए कि अगर हमें अपने धन का, अपनी सत्ता का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी कला का, अपने ज्ञान का अगर हमें अहंकार है, तो प्रारंभ हो चुका है हमारा पतन। अगर अहंकार हो गया हमें, निश्चित पतन होगा। इंद्र जैसे व्यक्ति का हो सकता है, तो फिर हम लोगों की क्या बात है। इंद्र जो राजाओं के देवता हैं, जिनको भगवान की विशेष कृपा है, भगवान उनके भाई के रूप में वहां पर विराजमान हैं, उनका पतन हो सकता है, तो फिर हमारे लिए क्या कहना। तो इंद्र ने बृहस्पति को स्वागत नहीं किया, उठकर खड़े नहीं हुए, आसन नहीं दिया, बृहस्पति वहां से चले गए। बृहस्पति को अपमान नहीं लगा, ये नहीं मानना चाहिए कि बृहस्पति भी तो अहंकारी है, क्यों चले गए, अरे कोई जगह लेके बैठ जाते, सरल है ना। अगर हम कह रहे हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, तो बृहस्पति को क्यों इतना अहंकार था कि उसको एक आकर अगर किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा तो चले गए क्रोध में, तो ये तो ठीक नहीं है। मतलब कितने अहंकारी, गुरु भी अहंकारी, शिष्य भी अहंकारी। नहीं, बृहस्पति को अहंकार नहीं था, बृहस्पति तो बड़े सरल, लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे जरूरी है इंद्र को सबक सिखाना, इसको अहंकार हो गया है, अगर इसका अहंकार मैंने तोड़ा नहीं तो ये इसके नाश का निश्चित कारण बनेगा। और बृहस्पति भविष्यवेत्ता हैं, वो देख सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, और इसीलिए वो वहां से चले गए। ये कभी कभी गुरु को ऐसा करना चाहिए। हर समय बड़े प्रेम से जब गुरु समझाते रहते तो इंद्र जैसा अहंकारी व्यक्ति समझता नहीं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हमें अपराध से बचना चाहिए। इंद्र ने वैष्णव अपराध कर दिया, क्योंकि बृहस्पति वैष्णव हैं, वो आए और गुरु भी हैं, तो उनके गुरु हैं, वैष्णव हैं, और उनका अपराध कर दिया। तो वैष्णव अपराध की सूची में एक अपराध ये भी है कि अगर कोई वैष्णव आए और हम प्रसन्न नहीं हों, हम उठकर उनका स्वागत नहीं करें, हम उनको स्थान नहीं दें। इतिहास में, शास्त्रों में ऐसे कई वर्णन हैं। स्वयं श्री कृष्ण एक समय जब नारद मुनि उनकी सभा में आए, श्री कृष्ण सिंहासन पर थे, द्वारिका में विराजमान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा, श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। हालांकि कोई आवश्यकता नहीं थी, नारद मुनि जानते थे ये तो भगवान है। नारद मुनि एक गुरु के रूप में नहीं आए थे, वो तो एक भक्त के रूप में दर्शन करने आए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने नियम का पालन किया, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय एक राजा थे, क्षत्रिय के रूप में राज्य कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी, एक वैष्णव आए हैं, तुरंत उठकर खड़े हो गए सिंहासन से अपने। तो ये दिखाया उन्होंने। और अगर कोई नहीं करता है, जैसे हम लोग रोमहर्षण सूत की बात देखते हैं, वैसे नियम ये है कि अगर कोई व्यासासन पर बैठा हो, प्रवचन कर रहा हो, तो उसको उठने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय कहेंगे आगे। लेकिन अगर वैष्णव, महान वैष्णव हो, गुरु हो और भगवान हो, उनके लिए वो नियम नहीं है, व्यक्ति को उठकर प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं इसको तात्पर्य में, जरूरी है। तो इसीलिए रोमहर्षण सूत ने किया नहीं, बलराम जी आए, वो उठकर खड़ा नहीं हुआ कि अरे मुझे आवश्यकता नहीं है, तो बलराम जी ने मार दिया, अहंकार से नहीं, ये दिखलाने के लिए कि ये अपराध है। तो इसीलिए इंद्र के उठकर ना खड़ा होना ये वैष्णव अपराध है। और वैष्णव अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा केवल उस व्यक्ति को आ सकती है जिसके ऊपर भक्तों की कृपा है, अन्यथा महाप्रभु की कृपा भी नहीं आती। जो महावदन्याय है, महाप्रभु तो आए हैं सबको कृपा देने के लिए, पात्र अपात्र ना देखी, कोई नहीं देखते हैं कि कौन है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी कृपा भी उस व्यक्ति पर नहीं आती है जो वैष्णवों के प्रति अपराध करता। और ये चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया अपनी ही माता शची माता के उदाहरण के द्वारा। तो जब अपनी माता को वो क्षमा नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों की बात क्या है। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि भक्तों की कृपा के बिना कोई उपाय नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास की रचना की, जिसमें वैष्णवों के आचरण के लिए वर्णन किया कैसे करना चाहिए, और उसमें वो वैष्णव अपराध का भी वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं शास्त्रों से उद्धत करके कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो वैष्णव अपराध करने वाले व्यक्ति का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी है सब समाप्त हो जाता है। इस धर्म का पालन कर रहा, इतना नहीं, हरिभक्ति विलास में लिखा है उसकी संतानें समाप्त हो जाती और अंततः वो नरक में जाता है अगर उसने वैष्णव अपराध किया है। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इसको बहुत स्पष्ट लिखते हैं और वो बताते हैं पद्म पुराण से कि वैष्णवों की निंदा अलग अलग प्रकार से की जाती है। वैष्णवों की निंदा किसी भी प्रकार से की गई हो व्यक्ति निश्चित नरक का भागी हो जाता है। जैसे अगर किसी वैष्णव की निंदा उसकी जाति के आधार पर की जाए, ये पहले प्रकार की निंदा है कि अगर उसकी जाति के आधार पर, उसका जन्म निम्न कुल में हुआ है और हम उनकी निंदा इसलिए करें तो फिर ये अपराध है। जैसे हरिदास ठाकुर का जन्म तो कोई बहुत बड़े ऊंचे परिवार में नहीं हुआ, ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, वैष्णव कुल में नहीं हुआ, एक बहुत निम्न कुल में, यवन कुल में हुआ। लेकिन अगर हम हरिदास ठाकुर की निंदा करें इस आधार पर कि हरिदास ठाकुर का जन्म तो कोई अच्छा नहीं है, वो कोई महान वैष्णव नहीं है, केवल इसलिए कि उन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया, नरक के भागी होंगे निश्चित। कृष्ण इसको स्वीकार नहीं करते हैं, आचार्यों ने समझाया है कि कृष्ण ये चीजें स्वीकार नहीं करते। तो अगर कोई जाति के आधार पर वैष्णव की निंदा करता है ये वैष्णव अपराध है। और जब हम लोग इस बातों को सुन रहे हैं, हमें केवल हरिदास ठाकुर, हमें अन्य शास्त्र इत्यादि नहीं सोचने चाहिए, हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि क्या हम आपस में एक दूसरे भक्त की निंदा इस प्रकार कर लेते हैं, क्या हमारे मन में आ जाता है कि ये तो निम्न जाति का है, अगर है तो अपराध है। दूसरी बात, दूसरी तरह से हम निंदा करते हैं कि उसने जो पूर्व में पाप किए हैं, भक्ति में आने से पूर्व उसने पाप कर लिए होंगे, कई पाप, हम सब पापी हैं, हम में से कोई ऐसा तो है नहीं, क्षमा चाहते हैं, आप लोग नहीं होंगे लेकिन हमारे लिए तो हम कह सकते हैं बिना पाप किए तो संभव ही नहीं था ये जीवन। तो पहले जिन्होंने जो पाप कर लिए उनके आधार पर उनकी निंदा करना, अरे आने से पहले कितनी शराब पीता था, मैंने देखा था तुमको, पड़े रहते थे पी के, अब क्या ये हरे कृष्णा कर रहे हो, ये निंदा भी गलत है। भले उसने कोई पाप किए हो, कैसे भी रहा हो, शराब पी हो, कितने हमने अजामिल का उदाहरण देखिए क्या क्या पाप नहीं किए थे, लेकिन विष्णु दूतों ने उसको बचा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं जा सकता नरक में। तो इसीलिए वैष्णवों की निंदा, उसने कितने ही पाप क्यों ना किए हों, हत्याएं ही क्यों ना की हों, रत्नाकर डाकू, आज हम ये नहीं कहते कि वाल्मीकि मुनि, अरे वो मारा करते थे लोगों को, हत्या करते थे, डाकू थे, कोई कह सकता है, अगर कहता है तो अपराध है। अभी हमने कहा केवल समझाने के लिए, अपराध है। तो इसीलिए उनके पूर्व जन्म में किए गए पापों की दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए किसी वैष्णव को, बहुत से पाप कर सकते हैं। और ये वाल्मीकि का अन्यों का उदाहरण ही नहीं, अपने में देखिए, क्या हम लोग कभी किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं, अरे तुम तो पता है तुम पहले क्या करते थे, कुछ भी करता हो, भाग्यवान है वो व्यक्ति, बड़ा दुर्लभ है वो व्यक्ति जिसने उन पापों को छोड़कर अब श्री कृष्ण की शरण ली है, इसलिए कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की निंदा हम लोग करते हैं कि कभी कभी भक्त से अनजाने में कोई पाप हो जाता है, भक्ति कर रहा है करते करते उससे अनजाने में पाप हो गया, उसके उस पाप को लेकर उसकी निंदा करना, ये भी अपराध है। होता है, भक्ति है, हम लोग सब बद्ध जीवन है और बद्ध जीवन में माया का बड़ा तीव्र प्रभाव है। हम में से कोई माया से परे तो नहीं है कि मुझे तो माया छू नहीं सकती, ऐसा अहंकार होना भी नहीं चाहिए। तो कभी कभी माया के प्रभाव में, कभी अपने बद्ध पूर्ण पूर्व आदतों के प्रभाव से भक्ति करते करते भी व्यक्ति अपराध या पाप कर बैठता है। उसकी निंदा उसके लिए करना, ये सब पुराणों में दिया गया है, उसकी निंदा उसके लिए करना ये भी अपराध है कि हम उसकी निंदा करें कि हाँ तुमने ये किया, देखो ऐसा हुआ। जरा सी कोई बात, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि जब एक बार एक व्यक्ति ने, एक टीचर ने एक एक्सरसाइज दी सब विद्यार्थियों को कि आपको कुछ करना है, सब आइए, समय पर सब आ गए, तो उसने एक पेपर दिया, सफेद रंग का पेपर उल्टा रखा हुआ था सबकी टेबल पर, और उसने कहा कि अब इसको आप सीधा कीजिए और जो भी आपको दिखे उसके बारे में लिखिए। तो सबने ऐसे घुमाया तो उसमें, उस पेपर में, पूरा सफेद पेपर था, बीच में एक छोटा सा काला दाग था, दाग या कहना चाहिए पॉइंट था, ब्लैक पॉइंट ऐसे किया हुआ था बस। तो उन्होंने देखा पेपर में कुछ नहीं है, सादा पेपर, उस पर बीच में एक काला दाग धब्बा लगा बस। तो टीचर ने कहा कि आप लिखिए इस बारे में जो भी आपको मन में आए। तो सबने कुछ कुछ लिखा किसी ने, और जब सबका वो पढ़ा गया तो सबने उस काले दाग के बारे में लिखा था कि काला दाग ऐसे लगता है, काला दाग वैसे लगता, अपनी अपनी पूरी बुद्धि लगाकर कि काला दाग क्या है, लेकिन किसी ने भी उस सफेद पेज के बारे में नहीं लिखा। तो टीचर ने उनसे कहा कि देखो सारे पेज पे इतना सा था काला दाग, आप सब ने उसकी ओर ध्यान दिया लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि सारा पेपर सफेद है, जरा सा तो दाग था, जरा से कहीं पर एक पॉइंट था, तो वो सबको ध्यान आया लेकिन जो सारा सफेद था वो ध्यान नहीं आया। इसी तरह जो भक्त भक्ति करता है, अगर उससे गलती से कोई अपराध, कोई पाप हो जाता है, हम उस पाप को देखते हैं, उसके जीवन भर की भक्ति को नहीं। कि ठीक है उसने पाप हो गया लेकिन हम देखते हैं अरे अरे बड़ा पापी, ये तो लायक ही नहीं भक्ति करने के लायक, ये इस तरह है कि पूरा कागज सफेद है, हम सफेद कागज को छोड़कर वो देख रहे हैं। हम भूल जाते हैं उस भक्त की सेवा, हम भूल जाते हैं उस भक्त का समर्पण, हम भूल जाते हैं उस भक्त के द्वारा किया गया भगवान के प्रति कार्य, तो क्या देखते हैं वो थोड़ा, शास्त्र कहता है अपराध है। तो तीसरे प्रकार का अपराध, ये सब हरिभक्ति विलास में भी वर्णन है और अन्य पुराणों में, तो तीसरे प्रकार का अपराध है। और चौथे प्रकार का, वैसे जब हम ये विषय पर देख रहे थे इंद्र के, तो हमें लग रहा था कि बहुत कम समय है वैष्णव अपराध पर बोलने के लिए, इस पर तो 3-4 दिन 10 दिन का सेमिनार होना चाहिए, तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत चर्चा हो पाएगी, लेकिन फिर भी विषय आया इसीलिए संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो चौथे प्रकार का अपराध बताया गया है कि हम किसी वैष्णव की निंदा करें कि उसने कोई गलती कर दी, अब गलती करने के बाद उसने उस गलती की सजा भी भुगत ली या उसको अपना ठीक कर लिया, अब बस थोड़ा सा हो गया है, ठीक हो रहा है अब, ठीक जो भी, जैसे कभी कभी कोई गलती करता है उसको कहा जाता है ठीक है तुम ये कर लो, तो अपने सुधार के लिए करता है, तो सुधर गया है, थोड़ा सा रह गया है, फिर भी उसकी निंदा करना, तुम कभी सुधर नहीं सकते, जो प्रयास कर रहा है उसकी निंदा करना। तो ये चार प्रकार की निंदाएं शास्त्र कहता है कि अपराध हैं, तो हमें अपराध नहीं करना चाहिए किसी के जन्म के आधार पर, किसी की गलती के आधार पर इत्यादि, हमें ये अपराध नहीं करने चाहिए वैष्णव अपराध, क्योंकि इससे केवल हम नरक के भागी होंगे। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं अपराधों के विषय में, वो कहते हैं कि अगर किसी को कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो गई है, अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, साधारण भक्त की नहीं, अगर किसी को कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो गई है और वो अपराध करता है तो उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण की कृपा मिली है कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, क्यों, अगर अपराध करता, तो इसको कैसे समझना चाहिए, कृष्ण की कृपा मिल गई फिर अपराध, कभी कभी हमें लगता है कि कृष्ण की कृपा मिली है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किए हैं और अपराध के बाद हम देखते हैं कि वो तो बहुत अच्छी तरह जप कर रहा है, बड़ी अच्छी तरह भक्ति कर रहा है और अपराध भी कर रहा है, तो हमें लगता है कि अरे इसको तो कृष्ण की कृपा है। लेकिन वो कृपा नहीं है, कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। तो वो जो प्रतीत हो रहा है कि उसका जप बहुत अच्छा हो रहा है, वो सेवा बड़ी अच्छी कर रहा है, वो कोई बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, कृष्ण प्रसन्न नहीं है। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि अगर वो अच्छा जप कर रहा है, वो अच्छी सेवा कर रहा है, उसके द्वारा कुछ मंदिर को बहुत सहयोग हो रहा है तो कृष्ण की कृपा है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कृष्ण उन अपराधों को देखते हैं, तो इसलिए ये जो है ये केवल दिखावा है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा। तो इसीलिए जब हम देखते हैं किसी को कि लगता है लेकिन वो कृष्ण की कृपा नहीं है, क्योंकि कृष्ण कभी ऐसे किसी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते जो उनके भक्तों के प्रति अपराध करता है, कृष्ण स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ऐसे कृष्ण को इतना प्रेम है अपने भक्तों से, कई कई उदाहरणों में हम लोग देख सकते हैं। सुदामा जब जरा से पोहे लेकर आया, कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि ये मुझे बहुत प्रिय है। फिर जो अभक्त होते हैं वो कितना ही बड़ा फीस्ट मुझे अर्पण क्यों ना करे, मैं देखता भी नहीं, जैसे दुर्योधन ने किया था, 56 भोग तैयार किया था भगवान के लिए, आइए आपको मैं खिलाऊंगा, भगवान ने देखा भी नहीं, गए भी नहीं उस तरफ, उनको कोई चिंता। जब पूछा दुर्योधन ने, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इतनी व्यवस्था की, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि तुम मेरे भक्तों से द्वेष करते हो। बस सरल एक ही उत्तर, तुम पांडवों से द्वेष करते हो, और जो व्यक्ति मेरे भक्तों से द्वेष करता है उसका 56 भोग हो या कुछ, भगवान को क्या लेना देना 56 भोग से। तो हम लोगों को लेना देना होता है कि जब एक तरफ देखे कि दाल राइस बनाए और दूसरी तरफ कुछ अच्छा पनीर सब्जी, तो हमारा आकर्षण पनीर पर होता है, भगवान का क्या? भगवान को कोई 56 भोग या उससे लेना देना नहीं है, भगवान तो भक्ति देखते हैं, भक्त्या भक्ति चाहिए, भगवान को भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, और जो अर्पण किया जाता है वो भक्ति से अर्पण हो तब भगवान स्वीकार करते हैं। उनके लिए क्या है, आपने बहुत बड़ा पनीर की सब्जी बना दी, रसमलाई बना दी, रसगुल्ला, और दूसरी तरफ कोई बहुत गरीब भक्त सूखी रोटी भगवान को अर्पण कर रहा है, भगवान उसको स्वीकार करेंगे? भगवान के लिए क्या लेना देना? तो इसीलिए जो भक्तों के प्रति अपराध करता है भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि अपराध क्यों होते हैं, व्यक्ति अपराध क्यों करता है, और साथ ही साथ वैसे अपराध से हमें बहुत बचना चाहिए। रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के 64 अंग दिए हैं उनमें से 19वां अंग है कि हमें अपराध से बचना चाहिए। तो पद्म पुराण में लिखा गया कि हम अपराध क्यों करते हैं। अपराध का जन्म होता है जब भक्ति नहीं होती हृदय में, भक्ति की कमी अपराध को उत्पन्न करती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और भक्ति की कमी कैसे होती है? 4 प्रकार से पद्म पुराण कहता है। एक, जब हमारे अंदर शुद्धता की कमी होती है, हम अपराध कर बैठते हैं। दूसरा, जब आदर की कमी होती है, हम अपराध कर बैठते हैं, भगवान के प्रति जब आदर नहीं होता तब। तीसरा, जब हमारे अंदर प्रयास की कमी होती है तब हम अपराध कर बैठते हैं। और चौथा, जब श्रद्धा की कमी होती है। तो पद्म पुराण कहते हैं 4 चीजों की कमी होने से व्यक्ति अपराध करता है। शुद्धता पहला चीज है कि जब शुद्धता की कमी होती है, तो जैसे हम लोग भगवान की सेवा के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत शुद्धता की आवश्यकता है, नहा कर जाना चाहिए, शुद्ध कपड़े पहन कर जाना चाहिए। तो जो भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान के निकट शुद्धता से जाना चाहिए, इवन भगवान के सामने यहाँ मंदिर में नहा कर आना चाहिए, शुद्ध होकर, ऐसे ही उठकर चले नहीं आना चाहिए। तो शुद्धता की जब कमी होती है तो वो अपराध को जन्म देती है। जब भगवान की सेवा में बहुत शुद्ध रहना पड़ता है, व्यक्ति अगर कर रहा कुछ खा नहीं सकते, अगर खा लिया तो वो अशुद्ध हो गया, वो कपड़ा फिर से जाकर नहा कर शुद्ध कपड़ा पहन कर आना पड़ेगा सेवा के लिए। या शौच आदि नहीं जा सकते भगवान की सेवा करते हुए, क्योंकि वह शुद्ध हो जाता है, या फिर जल भी, जैसे कभी कभी भगवान को जल देने में कोई व्यक्ति अगर अपने नाखूनों का उसमें स्पर्श कर दे तो वह शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं भगवान की सेवा के लिए, बड़ी शुद्धता से पालन करने चाहिए, ध्यान पूर्वक पालन करने चाहिए। तो शुद्धता की जब कमी होती है तो ये अपराध को जन्म देता है। तो इसलिए भगवान के ऑल्टर में जाने से पहले पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, शरीर को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। इसीलिए ऑल्टर में प्रवेश करने से पहले भूत शुद्धि की जाती है। भूत शुद्धि मतलब मन को शुद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा। पहले हम स्नान करके आते हैं, वो जल स्नान होता है, फिर मंत्र के द्वारा स्नान किया जाता है। तो मंत्र से मन को शुद्ध किया जाता है, जिसको भूत शुद्धि कहते हैं। भूत शुद्धि यानी शरीर और मन को। तो शुद्धता बहुत आवश्यक है भगवान की सेवा में। अगर शुद्धता की कमी होगी वो अपराध को जन्म दे देंगे। तो जो लोग भगवान की सेवा में अंदर जाते हैं या मंदिर भी आते हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना, मंदिर में पांव धोकर आना चाहिए। अगर हम बिना, जैसे पहले लोग चप्पल नहीं पहना करते थे, जब मंदिरों में जाते थे तो बिना चप्पल पहने जाते थे, तो स्वाभाविक है पांव में गंदगी लगती थी, इसलिए आने से पहले पांव को धोया जाता था। तो मंदिर प्रवेश करने से ये शुद्धता है, तो अगर नहीं है तो अपराध हो जाएगा। तो इसलिए बहुत शुद्धता का पालन करना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम आदर की कमी कर देते हैं भगवान के प्रति, एक तो शुद्धता की कमी कर देते हैं, दूसरा आदर की कमी कर देते हैं, कि हम लोग भगवान को, जैसे रूप गोस्वामी नियम देते हैं कि भगवान के सामने हमें जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए किसी को, भगवान के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। ये नियम है, इससे आदर बढ़ता है। लेकिन अगर उसमें कमी कर दें तो फिर वो अपराध को जन्म देते हैं। इतना ही नहीं, जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें ये भी अपराध है कि अगर हम भगवान के सामने अनावश्यक बातें करते हैं। इसीलिए नियम है कि भगवान के विग्रह की सेवा करने समय साइलेंस होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए सेवा करते समय। केवल एक ही कि अगर कुछ चीज़ चाहिए बस उतना मांगना चाहिए। अगर हम वहाँ भगवान के सामने खड़े होकर इधर उधर की बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं या कोई भी और बात करते हैं, अपराध है। वहाँ एकदम शांत रहना चाहिए। भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान के निकट खड़े हैं। लेकिन भक्त जब बहुत बार पुजारी जो सेवा करते रहते तो बड़ा उसको सस्ता ले लेते हैं। भगवान का अभिषेक करते करते इधर उधर का हंसी मजाक करते हैं, कोई बातें करते हैं इधर उधर की, अपराध है। जीव गोस्वामी ने सेवा अपराधों की सूची में इसको एक अपराध माना कि अगर आप ऐसे अपराध करते। तो भगवान के समक्ष जब हम बैठे हों तो हमें इतना ध्यान होना चाहिए, इतना आदर होना चाहिए भगवान का कि मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। केवल सेवा करें चुपचाप। हाँ, कोई बहुत एकदम अति आवश्यक चीज है तो धीरे से बोले। लेकिन जब भक्त बहुत समय सेवा करने लगते हैं, खास करके पुजारी, तो बड़ा सस्ता ले लेते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर की निंदा करने लगते हैं किसी की, उस व्यक्ति ने पता है तुम्हें ये किया, उस व्यक्ति ने ये किया, या कुछ और बातें करने लगते हैं, घर की बातें करने लगते हैं, दूसरी अन्य बातें करने लगते हैं। कोई बात नहीं करनी चाहिए, अपराध है ये। इसलिए विग्रह सेवा के समय शांत, ज़्यादातर मंदिरों में विग्रह सेवा के समय, क्योंकि थोड़े अंदर होते हैं तो प्रवचन लगा दिए जाते हैं कि वो लोग केवल बस वो सुनते रहें और सेवा करें, एक शब्द ना बोलें। प्रभुपाद के प्रवचन लगाए जाते हैं अंदर और भक्त सेवा करते करते उसको सुनकर सेवा करते हैं। तो देखिए, हम लोग जाने अनजाने में कितने अपराध करते हैं। कभी कभी तो हम लोग जोर जोर से हंसी मजाक कर लेते हैं भगवान के सामने, बहुत बड़ा अपराध। मतलब हम आदर नहीं दे रहे हैं, भगवान सामने हैं। कभी कभी हम लोग भगवान का अभिषेक करते हुए किसी को डांट देते हैं, अपराध है। भगवान के सामने ना किसी को डांटना चाहिए, ना झगड़ा करना चाहिए, ना जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, ना रोना चाहिए, ना दुखी होना चाहिए। इसीलिए जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो उसको भगवान के सामने नहीं आना चाहिए दुखी अवस्था में। तो ये सारे अपराध हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं। तो ये दूसरा पद्म पुराण में कहा गया क्षमा कीजिए, हमने सोचा था इस विषय पर बहुत थोड़ा सा बोलकर अध्याय को समाप्त करेंगे, लेकिन विषय ऐसा आ गया तो कुछ बोलना पड़ रहा है, तो हो सकता है कल भी अध्याय को पूरा करें। तो इसीलिए दूसरी चीज है, पहली चीज थी कि अगर हमारे अंदर शुद्धता की कमी है वो अपराध को जन्म देती है। दूसरी चीज आदर की कमी हो जाए भगवान के प्रति, चाहे अंदर या बाहर, ऐसा मतलब ये नहीं कि केवल अंदर, बाहर भी। जब हम मंदिर में हैं, भगवान के सामने हैं, जोर जोर से बात नहीं करना, कैसे हमें बैठना, अपने पांवों को ढक कर बैठना चाहिए, खुले पांव भगवान की ओर नहीं होने चाहिए। जैसे कभी कभी लोग ऐसे पांव फैलाकर, बहुत थक गए पांव फैलाकर बैठ जाएं, भगवान के सामने नहीं होना चाहिए, पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, ये नियम है। तो भगवान के सामने प्रणाम नहीं किया जाता है, केवल प्रभुपाद, क्योंकि वो संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, हम लोग उनको प्रणाम करते हैं या उनको पूजा करते हैं, वैसे अन्यथा भगवान के सामने ये नहीं करना चाहिए। तो ये नियम है किस लिए, भगवान को आदर देने के लिए। तो जब इनमें कमी हो जाती है हम अपराध कर बैठते हैं। तो हम ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि आप सब सोचें कि क्या कहीं हम ऐसा अपराध कोई कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग भगवान की सेवा अंदर करते हैं, मंदिर में तो सभी बैठते हैं, या फिर शुद्धता की बात आई तो क्या हम शुद्धता से आते हैं। तो इसीलिए अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्यों, अपराध हो जाएगा। ये नहीं कि हम सोकर उठे, लेट हो गया, 5 बजने वाला है तो चलो ऐसे ही भागे, जैसे कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज भागते हैं, लेट हो गया तो स्नान किए बिना नहीं आना चाहिए। और तीसरा है, हमने पहला बताया कि शुद्धता की कमी, दूसरा आदर की कमी, और तीसरा प्रयास की कमी। प्रयास की कमी भी अपराध को जन्म देती है। प्रयास मतलब अगर हम अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर सकते हैं और उसको नहीं करते हैं तो ये अपराध है। जैसे मान लीजिए हम भगवान के विग्रह की सेवा करने जाते हैं और हमारे अंदर क्षमता है कि हम अच्छे से भगवान का श्रृंगार कर सकें, लेकिन हम नहीं करते, कौन करे अभी, कौन वहाँ से जाकर फूल लेकर आए, कौन वो अच्छे से फेटा बांधे, कौन ये करे, ठीक है जैसा हो गया हो गया, खोल लो दर्शन खोल, अपराध है। हाँ अगर नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार करना चाहिए। और सभी, जैसे हम उत्सव मना सकते हैं, क्षमता है लेकिन हम नहीं मना, कौन इतना बड़ा हेडेक ले, रथ यात्रा कलेक्शन करो, घर घर जाओ, उसके बाद फिर वो इतने लोग आते हैं, फिर सन्यासी आते हैं, फिर वो रथ मंगाओ, ये करो, ग्राउंड जाओ, कितनी सारे कष्ट हैं, तो कौन करे ये सब हेडेक, चुपचाप बैठो मंदिर में, क्या तकलीफ है, कोई टेंशन ही नहीं है, सब चल रहा है ना, खाने पीना हो रहा है, सेवा चल रही है, क्या जरूरत है इतना बड़ा उत्सव करने। दरअसल बाहर के लोग भी कभी कभी आश्चर्य में आ जाते हैं, इस कौन वाले क्यों चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं, है ना। बाकी मंदिरों में देखिए साल में कभी एक बार गलती से उनका कुछ हो जाता है, वो भी सबका नहीं होता है, और ये इस्कॉन वाले देखो हर 2 महीने में पता चला आ गया, ये आ रहा है, ये उत्सव वो उत्सव, गौर पूर्णिमा हो रही है, अभी जैसे हम लोग रथ यात्रा करेंगे, 2 महीने बाद गौर पूर्णिमा, उसके 2 महीने बाद राम, 1 महीने बाद रामनवमी, उसके 1 महीने बाद नरसिंह जयंती, उसके 1 महीने बाद जन्माष्टमी, फिर कार्तिक, फिर रथ यात्रा, खत्म ही नहीं हो रहा है उनका। तो बाहर के लोग सोचते ये इस्कॉन वाले करते क्या है, इसीलिए उन्हें लगता है बहुत पैसा है इस्कॉन वालों के पास, हाँ कहाँ से आता है, बाहर से पैसा आता है और ये लोग खर्चा करते रहते हैं, उनको आके देखना चाहिए यहाँ पर कहाँ पैसा है यहाँ पर। तो जो भक्त हैं अंदर वो जानते हैं, अभी माइक पे सबके सामने नहीं बोलेंगे, पोल खुल जाएगी हम लोगों की, लोगों लगता है बहुत पैसा है इनके पास, पैसा नहीं है, हमें प्रभुपाद ने सिखाया जितना आए खर्चा करो, रखो मत बचाकर, भगवान देंगे, विश्वास रखो भगवान पर, ये हमारा सिद्धांत है। बाकी लोग आता है वो लगा लगा के डिपॉजिट में रख देते हैं, ट्रस्ट बदल जाती है, दूसरे ट्रस्टी आते हैं, सारा पैसा गायब, कोई फायदा नहीं है उसका। हम लोग बना बना के इधर जमा जमा करके रख दे, कुछ नहीं करें, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, संडे को प्रसाद नहीं बांटेंगे। लोग कहते हैं, अभी हमारे भक्त सब जाते हैं कलेक्शन पर, उनको लोगों ने कहा कि अरे आप लोग क्यों आते हो कलेक्शन पे, आपके पास तो इतना पैसा है। बाकी मंदिरों में लोग साल में एक बार थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं, आप लोग तो हर रविवार को खिलाए जा रहे हो। हर रविवार नहीं, हमने कहा यहाँ तो रोज खिला रहे हैं, कोई चिंता नहीं। तो हम नहीं खिला रहे, भगवान खिला रहे हैं। और हमारा सिद्धांत यह है जितना भगवान भेजे उतना खर्चा कर दो, फिर भगवान भेजेंगे, रख के क्या करना है। तो हम लोग तो यहाँ कोई अपना महल बनाने नहीं आए हैं कि थोड़ा बचा 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 के रख लो, फिर उसके पहले मृत्यु के पहले सारा निकाल के अपने संतानों को दे देना है। कुछ प्रभुपाद ने एक रुपया नहीं दिया अपनी संतानों को, उनकी भी तो संतानें थीं, प्रभुपाद ने एक रुपया नहीं दिया। तो क्यों, ये दिखाने के लिए कि सब कृष्ण का है, यूज करो उससे। मैं तो हम लोग करते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, तो ये जरूरी है। अगर नहीं करें तो अपराध है। अगर हम लोग सोच के बैठ जाएं कि इतना बड़ा, भी देखिए अभी अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई थी, फिर कार्तिक का उत्सव मनाया, फिर अभी ये कर रहे हैं, तो कोई सोच सकता है क्या है, आराम से बैठो ना, क्यों इतना टेंशन लेते हैं, अब ये करना है वो करना है, गार्डन बना रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ना। अगर आप विश्वास कीजिए, अगर हम शांति से बैठ जाएं, हम लोग कोई उत्सव नहीं करें, कोई ज़्यादा प्रचार नहीं करें, संडे को लोगों को द्रोण में शीरा दे दें, आराम से मंदिर चलेगा, आराम से, कोई चिंता नहीं होगी। इतना पैसा तो भगवान भेजते ही रहते हैं, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन ये अपराध है। अगर हम ये भावना में आ जाएं कि बस मंदिर चल रहा है, सब कुछ आ रहा है, खाओ पियो सो, ये अपराध है। हमें और प्रयास करना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक उत्सव हमने किया, उसमें 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, अगले उत्सव में 15 लाख खर्चा करें, और बड़ा करें, और लोगों को बुलाएं। उद्देश्य है कि लोग जुड़ें भगवान से। तो इसीलिए ये तीसरे प्रकार का अपराध, क्षमा चाहते हैं, समय बहुत हो गया। चौथे प्रकार के अपराध का कल वर्णन करेंगे। तो इस तरह ये अपराधों से हमें बचना चाहिए। आगे का 7वें अध्याय को आगे कल बढ़ाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किस तरह अपराध से बचना। इंद्र ने इंद्र की गद्दी पर बैठकर भी उससे अपराध हो गया, और एक कारण था कि उसने सोचा कि ये तो रोज आते हैं, लिखते हैं प्रभुपाद से, ये तो रोज आते हैं, तो इसलिए ज्यादा उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आएंगे अपने आप बैठ जाएंगे, जगह है ना उनके लिए, तो चिंता क्यों करना। प्रभुपाद कहते नहीं, उसको उठकर खड़ा होना चाहिए था, उसको प्रणाम करना चाहिए था, उसको स्थान देना चाहिए था, उसने दिया नहीं अपने गुरु के प्रति। तो इसी तरह हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी वैष्णव हैं, और वैष्णव कौन है, वैष्णव केवल वो नहीं है जो साल दो साल में एक बार आएंगे और हम उनको बड़ा देखते ही प्रणाम करेंगे, सब करेंगे, हम सब आसपास सब रहने वाले वैष्णव हैं। वैष्णव मतलब क्या है, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, जो भगवान के दास हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं तो सब वैष्णव हैं। हाँ, कोई कनिष्ठ मध्यम उत्तम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराध अपराध है। तो इसीलिए हमें बड़े ध्यान से रहना चाहिए। कल इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे करेंगे और फिर इस 7वें अध्याय को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हैं? वैसे आप सब तो अपराध करते ही नहीं है, इसीलिए कोई प्रश्न होगा नहीं। यस, हाँ, भगवान का प्रेम और कृपा में क्या अंतर है? अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है, भगवान के भक्तों के संग में रह रहा है, जपा कर रहा है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन उस जप में रुचि नहीं है, उसको भाव नहीं आ रहे हैं, वो जप करते हुए सेवा करते हुए कृष्ण का पूर्ण रूप से स्मरण नहीं कर रहा, ये प्रेम के अभाव है। तो प्रेम और कृपा में ये अंतर है कि भगवान की कृपा से हम लोग भक्ति मार्ग पर आ जाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग की पूर्णता है प्रेम। तो भक्ति मार्ग में आना ये कृपा है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त करना ये प्रेम है। तो व्यक्ति को कृपा मिल सकती है, मार्ग पे आ सकता है, लेकिन जब तक वो भक्तों की कृपा नहीं प्राप्त करेगा, पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, यस। आजकल लोग दुखी होते नहीं है, वो अलग बात है। यही प्रश्न है आपका? नहीं, क्या प्रश्न क्या? जैसे किसी के यहाँ ये नियम बनाए गए हैं कि मृत्यु के बाद आना नहीं चाहिए कुछ दिनों तक, उसके कारण ये हैं क्योंकि शोक से ऊपर आने में उस व्यक्ति को समय लगता है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनके लिए अलग अलग दिन दिए गए, इतने दिन तक उनको करना है, इतने दिन तक, क्योंकि उनको उतने दिन तक शोक से बाहर आने के लिए समय लगता है। ब्राह्मण क्योंकि ज्ञान में है वो जल्दी आ जाता है, क्षत्रिय को थोड़ा और समय लगता है, वैश्य को और समय लगता है, शूद्र को तो बहुत समय, लंबा समय दिया गया। तो उद्देश्य ये है कि जब हम दुखी हों, जैसे कोई प्रियजन चले जाते तो स्वाभाविक है दुख होता है ना हृदय में, तो आप हंसते मुस्कुराते तो नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, तो उस अवस्था में भगवान के समक्ष नहीं आना चाहिए। अब ये कलयुग है, लोग दुखी नहीं होते वो अलग बात है, तो इसलिए केवल नियम का पालन करते हैं कि हमारे यहाँ कोई मर गया चलो छुट्टी, 10 दिन मंदिर नहीं जाना है, तो वो ठीक नहीं है। जैसे कभी कभी किसी के बहुत दूर के रिश्ते, पता भी नहीं होता उसको मृत्यु हो जाती, मृत्यु के 4 दिन बाद फोन आता है कि भी तुम्हारे उसकी मृत्यु, वो 15 दिन मंदिर नहीं है। अब उसमें तो उसको पता भी नहीं वो कौन थे, कब मरे, क्या हुआ, कभी मिले नहीं, तो ऐसी अवस्था में ज़रूरी नहीं है, तो व्यवहारिक भी होना चाहिए। लेकिन मेन मुख्य उद्देश्य इस नियम का ये है, क्योंकि जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है स्वाभाविकता हम दुखी होते हैं, और अशुद्धता होती है, अशुद्धता मन की होती है, क्योंकि आप ज़्यादा स्मरण केवल उसका ही करते रहते हो। कृष्ण के सामने आकर भी आप कृष्ण का स्मरण नहीं करोगे, उसका स्मरण करोगे, तो फिर इस दृष्टि से ना आए सामने तो अच्छा है। और हाँ, भगवान का प्रसाद नहीं लेना ये कोई नियम नहीं है, प्रसाद तो लेना चाहिए उस समय पर। श्राद्ध करने की सबसे अच्छी विधि ही यही है कि हम श्राद्ध के समय, ज़्यादातर लोग श्राद्ध करते हैं जो मर गए सीधे उनको भोग लगा देते हैं या कहीं और, तो वो ठीक नहीं है। श्राद्ध की विधि सही ये है, भगवान को भोग अर्पण करें और भगवान का भोग जो प्रसाद के रूप में फिर सबको वितरित करें। तो प्रसाद खाने में कोई मनाही नहीं है, हाँ जप करने में कोई मनाही नहीं है, जप जितना ज़्यादा हो करना चाहिए, प्रसाद जितना ज़्यादा हो लेना चाहिए ताकि शुद्धिकरण जल्दी हो। तो कुछ चीज़ों को लोग वो रीति रिवाज मानकर बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं, उसके उद्देश्य को नहीं समझते। हमें रीति रिवाजों के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को जानकर तब उनका पालन करना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं कि बस कहा है अब नहीं करना है, क्या उद्देश्य है कुछ पता नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान की सेवा उन लोग को नहीं करनी चाहिए। हमने कहा प्रसाद खाने में मनाही नहीं है। जो जो व्यक्तियों के घर में मृत्यु हुई है उनको भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, भगवान को फूल भी अर्पण नहीं कर सकते हैं वे लोग, हाँ तो। लेकिन किसी और से, कहीं और कोई ला कर दे दे प्रसाद तो खा सकते हैं, उनको अर्पण नहीं करना चाहिए, उनको विग्रह सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई और अर्पण करके ला के दे, या किसी और को कह सकते हैं कि वो आपके घर के विग्रह को अर्पण करे, उसको आप खा सकते हैं, वो कोई तकलीफ नहीं। यस, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। आप सबको प्रश्न समझ में आया? हमने बीच में एक बार कभी कहा था कि अगर कोई अपने परिवार को, अपने कर्तव्य को छोड़कर, जैसे अचानक भक्ति में आने लगे और फिर पत्नी वत्नी को सब छोड़ दे कर्तव्य और आकर भक्ति करे, तो हम उसको समझाते कि ये ठीक नहीं है, ध्यान पूरा कर्तव्य करते हुए करो। लेकिन दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु ने तो अपनी युवा पत्नी को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया और वो चले गए, तो फिर ये कैसे समझना चाहिए? और हम लोग तो महाप्रभु के अनुयायी हैं तो हमें तो तुरंत छोड़ना चाहिए। माता जी बैठे हुए हैं, प्रभु जी इधर, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, माता जी बाहर होते तो आपको दूसरा उत्तर देते, अभी वो सामने है इसलिए दूसरा उत्तर दें, बाद में मिलना आपको दूसरा उत्तर देंगे। अच्छा खैर, तो इसको कैसे समझना चाहिए। पहली चीज उद्देश्य, महाप्रभु का उद्देश्य क्या था। उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो उनका उद्देश्य था लोगों का उद्धार करना। उनका उद्देश्य था कि वो सभी लोगों को जिस कार्य के लिए वो आए हैं उसको अब प्रारंभ करें, बांटना शुरू करें लोगों को कृष्ण प्रेम। तो उस उद्देश्य के लिए उन्होंने घर को त्यागा। तो महत्वपूर्ण है उद्देश्य। हम लोग जब कोई घर को त्यागते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, पत्नी बहुत झगड़ा कर रही है घर में, इससे अच्छा है कि भक्ति कर ले जाके, ये महाप्रभु का उद्देश्य नहीं था। या फिर घर चलाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, कमाई हो नहीं रही है, पत्नी रोज चिल्लाती है, बच्चों को स्कूल का फीस नहीं है, इस्कॉन वाले बढ़िया है। ये गलत, ये अपराध है। अपने कर्तव्यों को किस उद्देश्य के लिए त्यागना, ये महत्व। जैसे ब्रह्मचारी जीवन है, अब ब्रह्मचारियों ने भी अपने माता पिता की सेवा को त्याग दिया है। शास्त्र में कहा गया जो माता पिता की सेवा त्यागता है उसको नरक में कई जन्मों तक रहना पड़ता है। तो फिर क्या ये सारे ब्रह्मचारी नरक में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने त्यागा है। शास्त्र में लिखा, शास्त्र झूठा नहीं होता, लेकिन शास्त्र में ही लिखा है उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि हम किस लिए त्यागते हैं। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, हम सबके ऊपर ऋण है, देव ऋषि भूतात्र निणाम पितृणाम न किंग करो नायम ऋणी चराजन, कि हम सबके ऊपर ऋण है, लेकिन अगर हम उद्देश्य किस लिए, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अगर मुकुंद की शरण जाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने निम्न कर्तव्य को, वो भी कर्तव्य है लेकिन निम्न कर्तव्य को त्यागता है, भगवान गारंटी देते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो उस स्थिति में भगवान ने वचन दिया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आपको पाप नहीं लगेगा, भगवान कहते पाप लगेगा आपको, आप अपने माता पिता की सेवा छोड़ रहे हो, आप बाकी कर्तव्य छोड़ रहे हो, पाप लगेगा, लेकिन अहम तो हम सम्र पापे भ्यो मोक्ष, मैं मुक्त करूंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो। लेकिन कब, माम एकम शरणम व्रज, अगर हम पूर्ण रूप से उनकी शरण में जा रहे हैं, इस उद्देश्य से नहीं कि पत्नी झगड़ा कर रही है, इस उद्देश्य से नहीं कि पैसा नहीं दे सकता घर में, इस उद्देश्य से नहीं कि लोन लेने वाले खड़े हैं घर में, या इस उद्देश्य से नहीं कि जो भी और ऐसे भौतिक चीज है, तो वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति। जैसे तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ठीक है। तो जब हम महाप्रभु की बात करते हैं तो महाप्रभु ने छोड़ा जन कल्याण के लिए, उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि पत्नी झगड़ा कर रही, मतलब पत्नी तो बोल रही थी कि मत जाओ, लेकिन उन्होंने छोड़ा तो जन कल्याण के लिए। और दूसरी चीज, वो आए थे इस कारण से, उनको लीला करनी थी दिखलाने के लिए। तीसरी चीज, वो ये दिखलाना चाहते थे कि भगवान की भक्ति में वैराग्य आवश्यक है, लेकिन कब, जब आप पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार हैं। तो इस दृष्टि से हम लोगों को क्यों मना करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने कर्तव्यों को त्याग देते हैं तो गलत प्रचार होता है समाज में। लोग कहेंगे ये इस्कॉन वाले क्या करते हैं, अभी उसके बच्चे को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इन्होंने उसको घर मंदिर में रख लिया, अब उसके बच्चे को कौन देखेगा। तो फिर समाज में गलत प्रचार होता है। तो इसलिए हम लोगों को व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल। हम लोगों को ये नहीं कहें बस सब छोड़ो, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये सही बात है, सब बेकार है, गलत तो नहीं है, सब बेकार है, लेकिन थोड़ा उसके कर्तव्यों से उसको नहीं, क्योंकि भगवान कहते पहले कर्तव्य भी हो जाने चाहिए, फिर कर्तव्य करते करते उसके हृदय में स्वतः कृष्ण प्रेम इतना जागृत हो जाए, तब भगवान उसको योजना देंगे या प्रेरणा देंगे कि कैसे छोड़ना। तो अपरिपक्व अवस्था में हम छोड़ने के लिए मना करते हैं, तो इसीलिए जरूरत नहीं है। तो छोड़ने से अच्छा क्या है, वो घर वालों को भक्त बना दे, तो भक्तों का संग वहीं पे है उसको, फिर उसको छोड़ने की क्या आवश्यकता। तो इसलिए घर वालों को भक्त बना दे, वहीं रहे, उन्हीं के साथ भक्ति करे। जब एकदम ऐसी अवस्था हो कि घर वाले भक्त हो ही नहीं रहे, सब राक्षस हैं घर में, तब सोचा जा सकता है। तो इसीलिए हम घर को त्याग करने के लिए क्यों नहीं कहते? पहली चीज अपरिपक्व अवस्था है, मैच्योरिटी नहीं है, उसमें अगर हमने कह दिया तो ये उसका अपराध होगा। कर्तव्यों को त्यागने, कर्तव्यों से भागने के लिए हम लोग प्रेरणा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को कर्तव्यों से भगाकर आलसी बनाना नहीं है, बड़े कर्तव्यों में लगाना है। तो जब तक अगर वो व्यक्ति एक छोटे घर के कर्तव्यों को संभाल नहीं पा रहा तो फिर मंदिर के इतने बड़े कर्तव्य को क्या संभालेगा प्रचार के, तो इसीलिए हम उसको वो प्रेरणा नहीं देते हैं। और तीसरा, प्रचार में गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते, ठीक है। कोई भक्त बार बार गलत करता है, हाँ, ऐसे भक्तों से कैसे आचरण करना चाहिए? हाँ, पहली चीज है कि हमारे संबंध के ऊपर आश्रित होता है। अगर हमारा बहुत अच्छा संबंध है, हम उसको समझा सकते हैं, वो और अच्छा संबंध है, उसको डांट सकते हैं, उसको लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि वो ना करें। लेकिन अगर हमारा अच्छा संबंध नहीं है, कि केवल एक हरे कृष्ण का संबंध है कि भाई हाँ ठीक है, तो या तो हमें उनके जो वरिष्ठ हैं जो उनको समझा सकते हैं, उनसे जाकर चर्चा करनी चाहिए कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, जो बारंबार हो रहा है, हमने कई बार समझाया लेकिन फिर से वो वही अपराध कर रहा है। तो उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अगर हम ये करें तो अपराध नहीं है। अगर हम उसको निंदा कर रहे हैं ये कि ये तुमको बोला फिर भी तुम करते हो, तो वो अपराध है। लेकिन हम कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, भक्ति में आ गया, भगवान की शरण आ गया है, फिर ये अपराध करेगा, तो इस दृष्टि से समझाना कोई गलत नहीं है। या दूसरी चीज, आपको अधिकार हो, जैसे मंदिर में या कहीं पर अधिकार दिए जाते हैं, तो आपको अधिकार है और आप नहीं करो तो वो अपराध है। देखिए, जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है वो किसी को बुलाकर बताए नहीं कि तुम्हारी गलती है, तो वो उसके लिए अपराध है, क्योंकि उसको कहा गया है कि तुम्हें ये करना है। तो जब वो व्यक्ति बुलाकर बताता है तो वो उसको अपराध नहीं लगता। यानी मान लीजिए कि कोई व्यवस्थापन देख रहा है और उसने देखा कि उसके अधीन रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, बोले नहीं नहीं पाप हो जाएगा मैं अपनी भक्ति देखता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसको, ये गलत है, उसको बुलाना चाहिए क्योंकि उसको अधिकार है। लेकिन उस अधिकारी को भी इसलिए नहीं, उसका अपराध तब हो जाएगा कि अगर वो अपने आप को अधिकारी समझकर उसको बोले अरे मैं बोलता हूँ ना ऐसा करना है। अगर वो ये भाव से कर रहा है कि अगर मैंने नहीं बताया तो ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर से इसका पतन हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ ताकि ये उद्देश्य, तो हमेशा उद्देश्य अच्छा है। तो अगर आपका अच्छा संबंध है उस भक्त से, निश्चित आप उसको बोल सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि हर प्रयास से वो छोड़े और बाहर आए। और हमारा प्रयास हर तरह का हो सकता है। मान लीजिए कोई धन के कारण कोई गलत काम कर रहा है, तो हम ऐसा प्रयास करें कि उसके भक्ति के जीवन भी चलता रहे और उसके घर में धन भी आता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था हम करें, वो ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो इस दृष्टि से यस, किसी की निंदा करना गलत है, कब? जब हमारा उद्देश्य गलत है। लेकिन अगर हम भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उसको कर रहे हैं तो भी उस समय भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। समझ लीजिए कोई व्यक्ति बारंबार कह रहा है, तो हम 10 लोगों को जाकर बताएं कि देखो आपको पता है वो ऐसा कर रहा है, आपको पता है वो ऐसा, ये अपराध है। हम उस व्यक्ति को बताएं या फिर उस व्यक्ति को जो सुधार सकता है केवल उसको बताएं, बस उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो हमारे लिए अपराध है। और अगर हमारा अच्छा संबंध है, मित्रता है, तो निश्चित हमें करना चाहिए। मित्रता सच्ची ये नहीं है कि हम किसी को गलत करते हुए देखें और चुपचाप बैठे रहें कि मैं तो अपराध नहीं करना चाहता हूं, वो जो चाहे करे, नहीं, ये भी एक अपराध है। तो हमें उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छे उद्देश्य से अगर हम कुछ बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन बोलने में भी कभी कभी हो जाता है, बड़े प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समझते नहीं, वो व्यक्ति नहीं जानता है कि हम हमारे हृदय में क्या है, कि हम उसके अच्छे के लिए बोलना चाहते हैं, तो इसलिए स्थिति के अनुसार, लेकिन उस समय में वो अपराध नहीं है, बोल सकते हैं उसको। अगर हाँ, अगर आपका उससे अच्छा संबंध नहीं है, बोलने के कारण आपका उसके संबंध खराब होने वाला है और वो सुनने वाला नहीं है, तो चुप रहना अच्छा है फिर। लेकिन इतना कह देना कि अगर उसके कोई अच्छे मित्रों जो समझा सकें, या उसके अधिकारी, मित्र से भी अच्छा अधिकारी, उनको बोलकर फिर अपने आँख कान बंद कर लें कि हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, हमने कुछ गलत देखा, हमने बता दिया, अब भी अगर ठीक नहीं होता है वो जाने, अधिकारी जाने और कृष्ण जाने, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। अगली कुड़ाल यात्रा में अपराधों पर चर्चा करेंगे 3 दिन, क्योंकि इतना बड़ा विषय और इतने सारे प्रश्न आएंगे उसमें, तो अगली कुड़ाल यात्रा जब भी होगी तो केवल वैष्णव अपराध पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।
Today also now, at this